हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो शरद पूर्णिमा की आप सबको बधाई हो। तो आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा वो पूर्णिमा है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के अंदर रास मंडल में रास लीला का आरंभ किया था। ये आज का रात 12 बजे का चंद्रमा जब आकाश में होता है और पुष्प खिलते हैं, ये शरद ऋतु शुरू होती है भारत में। आपके देश में बिल्कुल उल्टा है। अपन यहाँ जो नियम पालन कर रहे हैं वो भारत के सीजन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ भारत वी आर ऑब्जर्विंग शरद पूर्णिमा। आपके देश में तो ये गर्म पूर्णिमा शुरू हो रही है। ये शरद पूर्णिमा तो श्रीमद् भागवत में 5 अध्याय 10 स्कंद में वो 5 प्राण हैं भागवत के, वो हृदय है भागवत के अंदर, जिसको 5 रास अध्याय बोलते हैं। रास लीला के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत में, रास पंचोध्याय ये हृदय है, 5 प्राण है। वो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाकर अपने प्रेमी भक्तों को बुलाया था और सब गोपियां भागती हुई सब काम छोड़कर, ऐसा भागवत में बड़ा अद्भुत वर्णन है। आधी रात के समय वन के अंदर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गई थी। वो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां तो थी नहीं, और भगवान श्री कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है और ये गोपियां राधा रानी का विस्तार है। दे आर एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी, और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, स्त्री नहीं है, शक्ति है भगवान की। भगवान के अपने श्री विग्रह से राधा रानी का प्रकट्य हुआ है। राधा रानी का प्रकट्य कैसे हुआ है? गोलोक में रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से राधा रानी प्रकट हुई है। तो राधा रानी कोई स्त्री साधारण संसार की नहीं है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, भगवान को आनंद देने के लिए। और राधा रानी का विस्तार है सारी गोपियां, और राधा रानी का विस्तार है वैकुंठ की सारी लक्ष्मियां, और राधा रानी का विस्तार है द्वारका की सारी भगवान श्री कृष्ण की रानियां। ये सब राधा रानी का विस्तार है। और गोपियों के तो अलग युद्ध भी है कि वेदों की ऋचाएं श्रुति रूपी गोपियां बन के आई हैं। दंडक आरण्य वन में तपस्या करते हुए ऋषि सीताराम के प्रेम को देखकर प्रार्थना करते हैं, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के समय में वो ऋषि सारे गोपियां बनकर आए हैं। तो पहली एक बात समझनी चाहिए कि ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है, और भगवान से इनका प्रेम साधारण संसार का प्रेम नहीं है। ये भगवान की परम भक्त हैं, जो संसार में भगवान के लिए, एक श्लोक भगवद गीता का आप सबने पढ़ा है, सबसे प्रसिद्ध श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका उदाहरण दुनिया में गोपियों के अलावा कोई है ही नहीं। लोक लजा का धर्म छोड़ा, संसार की नीति का धर्म छोड़ा, मर्यादाओं का धर्म छोड़ा, ये सर्वधर्मान परित्यज है। जितने भी संसार के नियमों के धर्म है उन सब का परित्याग करके गोपियां गई थी। और जब श्री कृष्ण के पास गोपियां पहुंची तो श्री कृष्ण ने पूछा, हाँ आप रात को आ गई हैं, दर्शन करने आई हैं, इस रात को क्या दर्शन करेंगे? वन का दर्शन करेंगे, हो गया, अब जाओ वापस। आपके घर वाले याद कर रहे हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं, आपकी गाय में से दूध निकालना है, जाओ वापस जाओ, ऐसे रात को आना अच्छा नहीं है। गोपियां कहती हैं, आपने बांसुरी में हर एक को नाम लेकर बुलाया और हम आपके प्रेम के कारण सब चली आई और अब आप बोलते हो चले जाओ। भगवान क्या प्रचार कर रहे हैं? धर्म का। कृष्ण धर्म का प्रचार कर रहे हैं और गोपियां सर्वधर्म परिचर्या की क्लास की हैं। ये बहुत बड़ा अद्भुत, ये पहला अध्याय प्रांश रास पंचोध्याय का बड़ा अद्भुत है कि भगवान धर्म का प्रचार कर रहे हैं और गोपियां सर्वधर्म परिचर्या की कक्षा की हैं। दे आर ऑफ द क्लास ऑफ सर्वधर्मान परिचर्या, तो दे आर नॉट, हम नहीं जाएंगी। और यहां गोपियां जो बोलती हैं उसको प्रणय गीत बोलते हैं, गोपियों का प्रणय गीत है, फिर गोपी गीत आता है। और ये गोपियों का प्रणय गीत ऐसा है कि कृष्ण को गोपियों की बात माननी पड़ी और गोपियां रात को उधर रुकी और कृष्ण ने उनके साथ रास किया। तो कृष्ण हार गए, गोपियां जीत गई। भगवान और भगवान के भक्तों में हमेशा कॉम्पिटिशन होती है और दोनों ऊपर तक जाते हैं, जहां क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं वहां भगवान हार जाता है और भगवान के भक्त जीत जाते हैं। और ये जो लीला एक महीना हम गाएंगे, कार्तिक महीना शुरू होने वाला, हमने शुरू कर दिया, वैसे कार्तिक महीना प्रतिपदा से शुरू होगा, तो उसका महीने का नाम तो कार्तिक महीना है। कैसे कार्तिक महीना है? जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे कार्तिक, श्रावण भाद्र कार्तिक, ऐसे सब महीने हैं। नमो विष्णु पदाय गौरवाणी, तो ये तो कार्तिक महीना हो गया। लेकिन इस महीने में दिवाली के दिन पर मां यशोदा ने 3 वर्ष के छोटे गोपाल को, कृष्ण को, रस्सी से बांधा था। तो रस्सी को कहते हैं दाम, और बांधा था पेट में उसको कहते हैं उदर, इसलिए भगवान का नाम हो गया दामोदर, दाम उदर। तो इस महीने का आध्यात्मिक नाम दामोदर मास है और साधारण नाम कार्तिक मास है। इस महीने दिवाली के दिन पे ये लीला हुई थी। हम 25 से 30 तक इस पूरी लीला के ऊपर और जो रोज हम दामोदर अष्टक गाते हैं इसके ऊपर सनातन गोस्वामी की टीका के ऊपर चर्चा करेंगे। 25 से 30 तक आप सबको निमंत्रण है, अब आया कीजिएगा। लेकिन यहां बात हम ये कहने जा रहे हैं, इधर भी कॉम्पिटिशन हो गई यशोदा और कृष्ण के बीच में। यशोदा कहती बांधूंगी, कृष्ण कहता नहीं बांधूंगा। बहुत कॉम्पिटिशन हुई, लेकिन कॉम्पिटिशन जब क्लाइमेक्स पे पहुंच गई तो कृष्ण हार गया और यशोदा जीत गई। गोपियां जीत गई, कृष्ण हार गया, और भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। भीष्म कहता है मैं वचन करता हूं कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अब दोनों की कॉम्पिटिशन में भीष्म पितामह को जीताया और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। अपना वचन तोड़ दिया कृष्ण ने, ही ब्रोक हिज ओन प्रॉमिस, ही केप्ट द प्रॉमिस ऑफ विषम पितामह। विषम पितामह, तो ये ऐसे अद्भुत उदाहरण है। कहते मायावादी कहते हैं हम भगवान के बराबर बनेंगे, भगवान के समान बन जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के भक्त भगवान से बड़े बन जाते हैं। भगवान से समान बनने से भगवान से बड़ा बनना अच्छा है ना। अब भगवान नंद बाबा के लिए चप्पल सर के ऊपर उठा के आता है तो नंद बाबा बड़ा हो गया ना। यशोदा बैठ के बांध रही है कन्हैया को तो कन्हैया छोटा हो गया, यशोदा बड़ी हो गई ना। तो भगवान का भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है और इसमें भगवान को बड़ा आनंद आता है। तो भगवान के समान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान का भक्त बनने की जरूरत है। तो फिर रास शुरू हुआ, गोपियां जीत गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया, हर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, अथवा इतना तेजी से नृत्य कर रहे थे कि हर दो गोपियां समझ रही थी हमारे बीच में कृष्ण है, और हर गोपी समझती है कृष्ण मेरे पास है। इसका मतलब मैं कृष्ण को अट्रैक्ट कर लिया है। भगवान ने देखा इनको तो थोड़ा सा अहंकार हो गया है कि हमारी बात मान भी ली और हमारे साथ रास नृत्य भी कर रहे। भगवान वहां से गुम हो गए, रास में से कहीं चले नहीं गए, लेकिन दिखने में किसी को नहीं आने लगे। अब तो सारी गोपियां चटपटाने लगी। अब सबसे अच्छी चीज जिसके लिए आदमी, आप मानो के घर से आए हैं, अब बस 8:30 बज रहे हैं, 9:45 बजेंगे, 9:00 बजेंगे दर्शन खुलेंगे और फिर प्रसाद बाहर होगा, तैयार होके आए, प्रसाद की प्लेट हाथ में आए और फिर उस वक्त प्लेट ही आपके हाथ से उड़ जाए तो फिर आप कहोगे ये प्लेट कहां गई, उसको ढूंढोगे। तो सारी रात जागकर घर बार छोड़कर कृष्ण के साथ मिलने आई और कृष्ण ही गुम हो गए। अब क्या करें? अब गोपियां ढूंढने के लिए वन में निकली, पेड़ को पूछते हैं कृष्ण को देखा था? जटा बड़ी बड़ी बनी हुई है, ये जो बरगद का पेड़ होता है ना, नीचे बड़ी जटा है, इधर बैठा है, ध्यान करके बता कृष्ण कहां है। और विष्णु सामने खड़े थे भगवान, हे विष्णु आपको प्रणाम है, बताइए कृष्ण कहां मिलेंगे। बड़ा आश्चर्य है, अचानक गोपियों की नजर नीचे गई और धरती के ऊपर देखती हैं कि ये तो 4 पांव है, अकेला कृष्ण नहीं गया, उसके साथ कोई और गया है। अरे हम सबको छोड़ के एक के साथ चला गया, वो कौन है? ये भागवत ने बहुत रहस्य रखा है, बताया नहीं है। भागवत में ये नाम का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया है, लेकिन अन्य पुराणों में इसका वर्णन है। और फिर आगे देखते हैं, अरे केवल 2 पांव के निशान और वो भी जमीन में घुसे हुए हैं और आगे का हिस्सा केवल पांव का घुसा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रियसी को साथ ले जा रहे थे उसने फूल आदि तोड़ने को बोला है तो उसको कंधे के ऊपर चढ़ाया है और पेड़ के फूल तोड़ रहे हैं, इसलिए उसके पांव नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, अपने रूप गोस्वामी की ये कथा सुनी है। रूप गोस्वामी हरे कृष्ण जपते हुए भगवान के ध्यान में लगे हुए थे और अचानक हंसे। जब रूप गोस्वामी हंसे उस वक्त एक बिचारा लंगड़ा ए लैम पर्सन वहां से गुजरा साधु, उसने समझा इतना बड़ा महात्मा है हमको देखकर हंसता है। उसको लगा ऑफेंस, बोले ये तो हमारा अपराध हो गया, मैं भगवान ने मुझे टेढ़ा बनाया है तो क्या हुआ, इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए साधु को। अब रूप गोस्वामी बैठ के ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है, जप में मन नहीं लग रहा है, लीला की स्मृति नहीं हो रही है। जाके सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं, भाई साहब महाराज मन नहीं लग रहा है भगवान के भजन में। बोला किसी साधु का अपराध किया है, किसी वैष्णव का अपराध तो नहीं किया है? बोला जान में तो मैंने नहीं किया है, किसी को कुछ कहा तो नहीं है मैंने। बोला फिर भी तुम एक काम करो, सबके लिए भंडारे का प्रबंध करो, सबको प्रसाद के लिए बुलाओ, जो नहीं आएगा इसका मतलब वो नाराज है, समाज के अंदर प्रसाद के लिए बुलाओ। तो भंडारे का प्रबंध किया, एक साधु नहीं आया। हाँ ये नहीं आया, जाके उससे पूछा, फिर बोला आप चाहिए प्रसाद खाने क्यों नहीं आ रहे? बोला आप हमारे ऊपर हंसते हैं और फिर प्रसाद के लिए बुलाते,
अरे, रूप गोस्वामी का मैं कब हंसा मुझे याद नहीं है। बोला उस दिन उस वक्त समय मैं वहां से जा रहा था और आप हंस रहे थे। ओ रूप गोस्वामी को याद आया, उस समय मैंने आपको तो देखा नहीं था। वैसे ये हमारे अपने अनुभव और अंदर की बात है, लेकिन आप नाराज है इसलिए बता रहा हूं। उस वक्त भगवान की एक लीला का मैं दर्शन कर रहा था। लीला क्या थी? राधा रानी कृष्ण को कह रही थी, ये ऊपर से फूल मेरे को तोड़ के दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने डाली को ऊपर से नीचे खींचा और राधा रानी को बोला, इसकी डाली पकड़ो और फूल को खींचो। राधा रानी ने एक हाथ से डाली पकड़ा, फूल को हाथ डाला और कृष्ण ने डाली को छोड़ दिया और डाली ऊपर चली गई और राधा रानी भी ऊपर चली गई। इसको देखकर रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। उसने बोला, मेरे को हंसी, मैं तुमको तो नहीं देखा था, मैं भगवान की लीला देखा था, उसमें हंसी आ। और यहां भी तो ये दो ही कदम है, चार तो है नहीं। इसका मतलब उसको कंधे के ऊपर चढ़ा के जा रहे हैं। अब तो सबने कहा, कौन उसको, क्यों एक को ले गए, सबको छोड़ गए और थोड़ा आगे जाते हैं तो वो गोपी भी वहां रोती हुई दिखती है। अरे आप यहां कैसे? बोला, मैं जा रही थी कृष्ण के साथ, मैं निकल के आई थी रास मंडल से, मुझे प्रेम से ले जा रहे थे, लेकिन मैं कहा कि मैं थक गई हूं, अब नहीं चल सकती हूं, तो कहा आपको उठा लेता हूं कंधे पे, ऐसे कहा और वहां से गुम हो गए। उसके भी मन में आया कि अब मुझे सबको छोड़ के ले जा रहा है, ये मन में भाव आया, सबसे प्रिय मैं हूं। तो वहां भी अहंकार भगवान को पसंद नहीं, वो अब तो सब साथ हो गई, अब जो एक गई थी वो भी मिल गई, सब जगह ढूंढा, रात हो गई कहीं नहीं मिल रहा है। तब सर ने कहा, ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा, तो क्या करना चाहिए? जहां रास कर रहे थे जमुना के किनारे चलो, वहीं चलकर गाते हैं कृष्ण के गीत, और इस अध्याय का नाम है गोपी गीत। वो प्रणय गीत था, ये गोपी गीत है। अब ये गोपी गीत इस महीने में वृंदावन में तो सब भक्त रोज गोपी गीत के जो 24-25 श्लोक हैं, 28 वो रोज गाते हैं बड़े प्रेम से। गोपियां जैसे वो गाने लगी श्री कृष्ण का, और उन श्लोकों में क्या गाती हैं? कहती हैं, आपके चरण कमल तो बहुत कोमल हैं, वन के अंदर आप कहां चले गए हो, कहीं कांटा लग गया तो? वहां भी ये नहीं सोच रही है कि रात पड़ी हम घर जाएं, ये सोच रही है कि कृष्ण को कोई कष्ट ना हो जाए। इसलिए गोपी गीत का बहुत बड़ा महत्व है कि गोपियां जो गा रही हैं, तेरी कथा इतनी आनंदमय, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, बड़े सुंदर गोपी गीत के ये श्लोक गाया, और जैसे श्लोक गाया भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। जैसे श्लोक गाया भगवान वहां प्रकट हो गए, कहीं गए तो थे नहीं। जैसे ही उनके मन से ये भाव चला गया कि हम, हमारी वजह से कृष्ण है, हमारे से, वो जब अहंकार का थोड़ा भाव आया था वो चला गया, तो एकदम भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान को अहंकार भक्त का पसंद नहीं है, बड़ाई और अहंकार पसंद नहीं है। एक बार द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये गरुड़ को बहुत बड़ा अहंकार हो गया है कि मैं बहुत तेज चलता हूं, और सत्यभामा को यह अहंकार था मैं सबसे सुंदर हूं, और सुदर्शन चक्र को यह अहंकार है कि भगवान मुझे अपनी उंगली में सदा रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, इनके अहंकार का दमन करना चाहिए, भक्तों के अंदर अहंकार नहीं रहना चाहिए। तो भगवान ने गरुड़ को कहा, जाओ किम पुरुष लोक में, हनुमान को कहो श्री कृष्ण बुला रहे हैं। गरुड़ उल्टा हो गया, किम पुरुष लोक में, हनुमान बैठा था, हनुमान जी को बोला, आप चलिए कृष्ण बुला रहा है, मेरी पीठ के ऊपर बैठिए, जल्दी चले। हनुमान ने कहा, आप जाइए मैं आ रहा हूं। ए बोला, बंदर की तरह कूदते कूदते कब पहुंचोगे? भगवान ने आदेश दिया, बैठो मेरे ऊपर। अब हनुमान कहते हैं, भगवान का वाहन है, भगवान जिसके ऊपर बैठते हैं इसके ऊपर मैं कैसे बैठूं, ये तो अपराध हो जाएगा। तो वो गरुड़ उसको उठा के बोला, नहीं चलो। अब हनुमान को आया, हनुमान धक्का दिया गरुड़ को ऐसे गरुड़ जाके नीचे पानी के तालाब में गिरा। अब हनुमान तो वायु पुत्र है, वो वेग से उड़ा और द्वारका की सीमा में आने से पहले भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा सुदर्शन चक्र को, द्वारका की सीमा के ऊपर तुम पहरा दे दो, सिक्योरिटी लगा दो, कोई द्वारका में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और सत्यभामा को कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने हनुमान को बुलाया है, वो जब आएगा तो मेरे साथ सीता को देखना पसंद करेगा, वो बहुत सुंदर है। सीता कहां से ना, बोलो मैं हूं ना। अच्छा, जैसे आया हनुमान जी लैंड किया द्वारका के बॉर्डर पे, सुदर्शन बोला अंदर नहीं जा सकते हो, बोला श्री कृष्ण ने बुलाया है, बोला नहीं मुझे मना किया है। हनुमान ने सुदर्शन को पकड़ के दांतों के बीच में रखा, जाके सीधा सत्यभामा के महल में भगवान बैठे थे वहां उतरे। भगवान बोलते कैसे जल्दी आ गए। हनुमान जी मैंने आपको बुलाया था, हनुमान बोल नहीं रहा है। बोला गरुड़ कहां है, बोल नहीं रहा है, कुछ बोलो तो सही। तो मुंह से सुदर्शन चक्कर निकाल के नीचे रखा, बोला ये रास्ते में खड़ा था, आने नहीं दे रहा था, अब बोलता हूं, लेकिन मैं सीता जी कहां गई, मैं ये जानती नहीं दिख रही, ये किसको बिठाया आपने अपने साथ में। सत्य मां तो बड़ी शर्म आने लगी कि ये क्या कह रहा है, ये हनुमान बंदा है मुझे बोलता है, तो ये जानकी नहीं है, इस किसको बिठाया है या। इतनी देर में गरुड़ पंख भीगे हुए थे, उन्होंने कहा गरुड़ कहां है, बोला आता होगा। गरुड़ आके देखता हनुमान मुझसे पहले बैठा है। अब भगवान गरुड़ की तरफ देखें, फिर चक्कर की तरफ देखें और सत्यभामा की तरफ देखें, तीनों का एकदम शांत हो गया, अहंकार एकदम शांत हो गया एक ही काम में। तो आज भगवान ने यहां इन गोपियों के अंदर जो अहम भाव था उसको समाप्त कर दिया। और फिर गोपियों ने कहा आप हमको छोड़ के क्यों चले गए। तब श्री कृष्ण ने कारण बताया कि मैं आपका प्रेम बढ़ाना चाह रहा था। जो प्रेम जुदाई में होता है वो प्रेम मिलन में नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण की ये भूमिका है, क्योंकि अब श्री कृष्ण जाने वाले हैं 100 साल के लिए, अब गोपियां 100 साल कृष्ण से नहीं मिलेंगी, तो उनको जुदाई के अंदर कृष्ण से कैसे प्रेम करना है ये शिक्षा देनी थी। इसलिए भगवान ने कहा मैं केवल आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए आपके बीच में से गुम हो गया था, आई डिसअपियर्ड टू इंक्रीज योर लव फॉर मी। और फिर कहा गोपियों न पारे हम, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। कृष्ण ने कहा गोपियों मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, मैं आपका आई एम सोल्ड टू यू, मैं बिक चुका आपके पास, आई कैन नॉट रीपे यू। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है सब कुछ छोड़ के आई है, ये मैं नहीं कर सकता। और फिर तो ब्रह्मा के दिन जितनी वो रात हुई और सारी रात रास नृत्य हुआ इसका वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया था कि गोपियां मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए तब उनके मन में ये याद आ गई कि मैंने भगवत गीता में कहा है कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है वैसे ही मैं उससे बर्ताव, ये यथा माम प्रपद्यन्ति। तो गोपियों ने मेरे लिए घर बार छोड़ा था, मैंने कब छोड़ा। आज गोपियों का ऋण उतारना है। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 16 साल की विष्णु प्रिया को छोड़कर संन्यास लेते हैं, ये गोपियों का ऋण उतार रहे हैं। आज घर बार छोड़ रहे हैं, आज सन्यासी बन के गली गली में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु उस रास लीला में गोपियों से किए हुए वायदे को पूरा करने के लिए महाप्रभु ने सन्यास लिया, और महाप्रभु ने सन्यास लिया तब महाप्रभु पूरे भारत में भ्रमण करके प्रचार कर सके। और उसी महाप्रभु की कृपा से आज हम श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर मंदिर के अंदर बैठकर और ये कार्तिक महीना पूरा आनंद से प्रभुपाद की कृपा से आप सब इसका आनंद और सुख ले रहे हैं। इस महीने में छोटा भी किया हुआ भगवान को दीप रोज बहुत बड़ा पुण्य का फल देगा। इसी महीने में आगे गोवर्धन पूजा भी आएगी, दीपमालिका दिवाली भी आएगी, तो आप उत्साह के साथ इस महीने में कुछ व्रत ले लीजिए, जप जरा प्रेम से कीजिए और अपने मानव जन्म को सफल कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। Twenty-five minutes.